परिशिष्ट आठ, एंग्लो जापानी संबंध, एंग्लो जापानीज अलायंस 1902। उन्नीस सौ दो की एंग्लो जापानी संबंध अपनी तरह की पहली ऐसी संधि थी जिसमें एक पुराना स्थापित पश्चिमी राष्ट्र था और दूसरा पूर्व का एक नया राष्ट्र जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आया था। यह संबंध ब्रिटेन और जापान द्वारा अपने साझे हितों एवं अभिलाषाओं की सुरक्षा के लिए किया गया था। इस संबंध का मुख्य उद्देश्य चीन में रूस के निरंतर बढ़ते हुए प्रभाव को रोककर दोनों देशों के हितों की सुदूर पूर्व में रक्षा करना भी था। यदि ब्रिटेन ने इस संबंध के द्वारा अपनी शानदार पृथकता स्प्लेंडिड आइसोलेशन को छोड़ दिया तो जापान ने इस संबंध के द्वारा एक आधुनिक एवं शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में राष्ट्रों के परिवार में प्रवेश पाया। जैसा कि रिचर्ड स्टोरी का कहना है, त्रिपक्षीय हस्तक्षेप ट्रिपल इंटरवेंशन के बाद यदि जापान वह सब कुछ पाना चाहता था तो उसने खोया था, तो उसके लिए यह जरूरी था कि वह या तो रूस के साथ कोई संतोषजनक समझौता करे या फिर ब्रिटेन के साथ मैत्री करें। रूस पक्षीय गुट जिसके नेता इतो हिरोबुमी और इनोउए का ओरू थे चाहता था कि जापान रूस के साथ पुनमेल स्थापित करे तथा कोरिया एवं मंचूरिया को क्रमशः जापान एवं रूस के प्रभाव क्षेत्र मान ले। दूसरा गुट जिसका नेतृत्व कत्सुरा एवं यामागाता के हाथों में था रूस को भरोसे के लायक नहीं समझता था और इसलिए ब्रिटेन के साथ संधि का समर्थन करता था। अंत में इसी गुट की विजय हुई क्योंकि रूस के साथ समझौते को कमजोरी की निशान माना जा रहा था। वैसे भी चीन जापान युद्ध के तुरंत पश्चात ब्रिटेन ने मैत्रीपूर्ण तटस्थता बनाए रखने की कोशिश की। इस कारण भी स्वाभाविक था कि ब्रिटेन को ही चुना जाए। जापान की रूस से शत्रुता तब आरंभ हुई जब रूस ने त्रिपक्षीय हस्तक्षेप में भाग लेकर जापान के चीन जापान युद्ध 1894 से 95 में विजय प्राप्त करने के बावजूद उसे उसके फायदे से वंचित कर दिया, विशेषकर जब उसे लियाओ तुंग प्रायद्वीप चीन को लौटाने पर मजबूर किया गया। इसके साथ साथ जापान को तब भारी चिंता हुई जब रूस ने चीन के रक्षक होने का ढोंग करके चीन से पोर्ट आर्थर समेत लियाओतुंग प्रायद्वीप का 25 वर्ष के पट्टे के साथ साथ मंचूरिया के बीच में से व्लाडिवोस्टोक तक रेलवे लाइन बिछाने का भी अधिकार प्राप्त कर लिया। इसकी मदद से रूस रेलवे क्षेत्र में अपनी सेना भेज सकता था और यह जापान को बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वह मंचूरिया को अपने खुद के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करता था। रूस और जापान के आपसी संबंध उस समय और भी बिगड़ गए जब रूस ने जापान के इस प्रस्ताव को कि वे रूस के हितों की मंचूरिया में तथा जापान के हितों की कोरिया में रक्षा के लिए जापान से एक संधि करें ठुकरा दिया। जापान की कोरिया के मामले में संवेदनशीलता का फायदा उठाते हुए रूस ने यालू नदी पर इमारती लकड़ी काटने पर बहुमूल्य अधिकार प्राप्त कर लिया। जापान को कोरिया अपने हाथों से निकलता दिखाई पड़ रहा था और उसने इस डर के फलस्वरूप रूस के साथ 1896 में यामागाता लोबानोवा समझौता किया। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों के कोरिया में अधिकार बराबर हो गए तथा दोनों देश कोरिया प्रायद्वीप से अपनी सेनाएं हटाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन रूस ने कोरिया में रूसी सैनिक शिक्षक भेजकर तथा कोरिया को वित्तीय सहायता देकर समझौते का उल्लंघन किया। फिर जापान ने 1898 का निशी रोजन समझौता किया ताकि रूसी प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सके, लेकिन रूस की आक्रामक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई और जब रूस ने कोरियाई तट पर हिमरहित बंदरगाह प्राप्त करने की कोशिश की तब दोनों देशों के संबंध और भी बिगड़ गए। 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन भी किसी मित्र देश की तलाश में था, क्योंकि उसकी शानदार पृथकता की नीति पुरानी हो चुकी थी। बोअर युद्ध ने न केवल उसकी रक्षा नीति की कमजोरियों को प्रदर्शित कर दिया था, बल्कि यूरोपीय शक्तियों में एक अच्छे मित्र की कमी को भी स्पष्ट कर दिया था। ब्रिटिश नेताओं ने महसूस किया कि शानदार पृथकता की नीति में उन्हें अकेले ही अपने साम्राज्य के किसी भी भाग पर हुए आक्रमण का सामना करना पड़ सकता है। जर्मनी के साथ संधि की ब्रिटिश कोशिशों का जवाब जर्मनी ने दो टूक ही दिया। जर्मनी ने इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ त्रिपक्षीय संधि तथा रूस के साथ मैत्री संबंधों को ज़्यादा महत्व दिया। ब्रिटेन को भी रूस से जापान की तरह ही डर था कि कहीं दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ रूस यांगत्ज़ घाटी में उसके प्रभाव क्षेत्र को खतरे में न डाल ले दे। स्कोटस मुराकिएप सम्मेलन में ब्रिटेन ने मंचूरिया में रूस के हितों को स्वीकृति दे दी और इसके बदले में रूस ने यांगत्ज़ घाटी में ब्रिटेन के हितों को मान लिया, लेकिन रूसी इरादों ने ब्रिटेन के मन में भय पैदा किए रखा। फलस्वरूप उसका ध्यान सुंदरपुर की उभरती हुई नई शक्ति जापान की ओर गया। ईटा की रूसी यात्रा ने ब्रिटेन के लिए शीघ्र संधि करने का वातावरण पैदा कर दिया, क्योंकि यदि रूस और जापान के बीच कोई समझौता हो जाता तो ब्रिटेन के चीन एवं प्रशांत क्षेत्रों को पूरा खतरा हो जाता। खुशकिस्मती से रूस और जापान की बातचीत असफल रही। अब ब्रिटेन ने बिना देर किए 30 जनवरी 1902 को लैंसडाउन एवं हयाशी के जरिए आंग्ल जापानी संधि पर हस्ताक्षर किए। इंग्लैंड और रूस के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर करने के मुख्य कारण उन दोनों द्वारा सुदूर पूर्व में रूसी प्रभाव को बढ़ने से रोकना था। संधि की प्रस्तावना में भी दोनों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि यह संधि यथापूर्ण स्थिति बनाए रखने तथा सुदूर पूर्व में शांति बनाए रखने के लिए की गई थी। दोनों देश मुख्य तौर पर चाहते थे कि मंचूरिया और कोरिया की स्वतंत्रता एवं भूमि अस्तित्व बना रहे, ताकि सभी राष्ट्रों को वहां पर बराबर का मौका प्राप्त हो। हालांकि उन्होंने चीन एवं कोरिया के विरुद्ध किसी प्रकार के भी आक्रामक इरादों से साफ इनकार किया, लेकिन फिर भी संधि में प्रावधान किया गया कि उन लोगों से किसी की रुचि को यदि कोई खतरा हो तो वह उचित कदम उठा सकता है। इस समझौते में विशेषकर इस बात को मान्यता दी गई कि इंग्लैंड की रुचि मुख्य तौर पर चीन में थी, जबकि जापान की रुचि चीन के साथ साथ खासकर कोरिया में भी थी। इस संधि में यह भी तय किया गया कि दोनों में से एक का यदि तीसरा शक्ति से युद्ध होता है तो युद्ध न करने वाले उनमें से दूसरे देश को तटस्थता बनाए रखनी होगी। यदि उनमें से एक के शत्रु की सहायता के लिए कोई शक्ति आती है तो दूसरा मित्र देश तुरंत उसकी सहायता के लिए आएगा। संधि की अवधि 5 वर्ष तय की गई। ब्रिटिश विचारधारा के अनुसार इस संधि ने 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में रूसी प्रभाव को बढ़ने से रोकने का महत्वपूर्ण कार्य किया। जापानियों के लिए भी, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नए थे, यह संधि मनोवैज्ञानिक एवं राजनीतिक स्तर पर काफ़ी मायने रखती थी। इस संधि ने जापानी राष्ट्रवादियों के उस आत्मसम्मान को लौटा दिया जो वह कॉमोडोर पेरी के आने पर आधी शताब्दी पहले खो चुकी थी। राजनीतिक तौर पर इस संधि का जापानी शक्ति पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब वह रूस से बराबरी की होड़ लेकर चल सकता था। इस संधि के कारण जापान रूस के बिना किसी तीसरी भी शक्ति के डर के युद्ध लड़ सका। साथ ही इस संधि ने जापान को एक तरह से यह गारंटी भी दी कि अब उसके खिलाफ चीन जापान युद्ध के तुरंत बाद की तरह शक्तियां एकजुट नहीं हो पाएंगी। इस संधि के द्वारा ब्रिटेन ने कोरिया में जापानी हित को स्वीकृति देकर जापान को एक विश्व शक्ति होने का दर्जा भी प्रदान कर दिया। इस संधि के फलस्वरूप जापानियों की चीन में और विशेषकर कोरिया में विस्तार की अभिलाषा काफी हद तक पूरी हो गई। अब चारों ओर से सुरक्षित महसूस करने के बाद जापान अपने विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए चीन में प्रवेश कर गया तथा उसका आर्थिक शोषण करने लगा। धीरे धीरे उसने मंचूरिया रेलवे, योकोहामा बैंक तथा चीनी पट्टों के द्वारा मंचूरिया पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।